जैसे ही नंदिनी की कार विला से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अभिमन्यु की कार विला में आई। इप्सिता अभिमन्यु को देखकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अभिमन्यु की कार गेट पर रुकी और अभिमन्यु कार से उतरते ही इप्सिता की तरफ देखने लगा। वो अंदर आया और इप्सिता से बोला, क्या बात है इप्सिता, आप यहाँ गेट के पास क्यों खड़ी हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु से नजरें नहीं मिलाईं और गेट से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, वो हम नंदिनी को छोड़ने यहाँ आए थे। अभिमन्यु ने ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी से कहा, नंदिनी यहाँ आई थी? आपने हमें बताया नहीं कि आप नंदिनी को बुलाने वाली थीं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर उखड़े हुए लहजे में कहा, क्या बताते हम आपसे, हमारे उठने से पहले ही आप यहाँ से चले गए थे और वैसे भी हम घर में अकेले बोर हो रहे थे, इसीलिए हमने नंदिनी को बुलाया। पूरे घर में हम अकेले थे तो क्या ही करते, इसीलिए नंदिनी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके अलावा हम और किसे जानते हैं यहाँ, एक वही तो है जिससे हम खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। इतना बोलकर इप्सिता चुपचाप अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु इप्सिता की बातें सुनकर समझ गया कि इप्सिता ने उसे ताना मारा है। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोल पाता, इप्सिता अपने कमरे में चली गई। इप्सिता को इस तरह वहां से जाते देखकर अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ये इप्सिता ने मुझे ताना मारा है क्या? शायद आज मैं उन्हें बिना बताए गया, इसीलिए उन्हें ये बात बुरी लगी होगी। अभिमन्यु इप्सिता के पीछे जाने लगा और जैसे ही वो उसके कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा इप्सिता अपनी किताबें खोलकर कुछ लिख रही थीं। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह लिखते देखकर वहीं कमरे के बाहर रुक गया। उसने अपने मन में कहा, इप्सिता अभी शायद अपने एग्जाम को लेकर टेंशन में है और अगर मैं अभी उनके पास गया और उनसे कोई बात की तो कहीं और ज्यादा टेंशन में ना आ जाए। वो पहले ही अपने एग्जाम को लेकर टेंशन में है, इसीलिए अभी मेरा उनसे बात ना करना ही बेहतर होगा। अभिमन्यु इतना सोचकर अपने कमरे में चला गया। इप्सिता ने अपनी किताबें बंद करते हुए कहा, मुझे अभिमन्यु से बात करनी होगी क्योंकि मैंने अवंतिका के बारे में संजय अंकल से पता लगवाया था। अभिमन्यु को तो ये बात पता नहीं होगी और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है मुझे अभिमन्यु से बात करनी चाहिए। इप्सिता इतना सोचकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकली और अभिमन्यु के कमरे में गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अभिमन्यु अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, इप्सिता आप यहाँ? इप्सिता कमरे के अंदर आई और उसने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अभिमन्यु हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभिमन्यु इप्सिता की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ मुझे पता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप यहाँ अवंतिका के बारे में पूछने आई हैं ना? इप्सिता बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने कदम अभिमन्यु की तरफ बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपको कैसे पता? अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल के इंसिडेंट के बाद मुझे पता है आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे और आप उसी बारे में मुझसे बात करने आई हैं, है ना? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम दोनों की इतनी जल्दी शादी होने वाली है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको अब मुझे अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बतानी चाहिए? ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपने मुझे अपनी लाइफ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आपको मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ना ही आपके प्रेजेंट के बारे में पता है और ना ही आपके पास्ट के बारे में। क्या आपको लगता है कि इस तरह से मुझसे ये सारी बातें छुपाना सही है? अभिमन्यु को उस दिन कॉलेज में इप्सिता किसी लड़के से बात करती हुई याद आया और वो लड़का उसके गले भी लगा था। वे लोग काफी क्लोज लग रहे थे। वे सब कुछ याद करके उसने धीमी आवाज में बोला, आप भी तो मुझसे काफी कुछ छुपाती हैं। इप्सिता ये बात सुनकर थोड़ी चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? अभिमन्यु ने धीरे से नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, अवंतिका के बारे में जानना है ना आपको, बताता हूँ मैं आपको। कल अवंतिका की बात सुनकर आप इतना तो समझ ही गई होंगी कि वो मेरी एक्स है। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में देखा। वो काफी थका हुआ लग रहा था या फिर शायद मायूस, लेकिन फिर भी उसने इप्सिता के सवाल का जवाब देना जरूरी समझा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल अवंतिका ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। उसकी बात सुनकर इप्सिता हैरान होते हुए बोली, मतलब? अभिमन्यु ने उसे अपनी पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों ही ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने अपनी बात आगे बोलना जारी रखा। अभिमन्यु ने बात जारी रखते हुए कहा, अवंतिका मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की थी जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं आई थी। अवंतिका मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और उसके बाद मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया। अवंतिका ने मुझे पृथ्वी की वजह से डंप किया और मैं आपको सच बताऊं तो मैं अवंतिका से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूं। मैं उसे ओवरकम नहीं कर पाया हूं। वो आज भी अगर मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके लिए मैंने जैसा फील किया है आज तक मैंने कभी किसी भी लड़की के लिए फील नहीं किया, और सच बताऊं तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए कल वो मेरी आंखों के सामने आई तो भले ही मुझे उस पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाया। इप्सिता अभिमन्यु की बातें सुनकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, और जैसे जैसे अभिमन्यु अवंतिका के बारे में उसे बता रहा था वो सब सुनकर इप्सिता का दिल बैठता जा रहा था। अभिमन्यु ने जब ये बात कही कि वो अवंतिका को अभी भी नहीं भुला पाया है, ये बात सुनकर इप्सिता को काफी दुख हुआ। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, दरअसल मैं अवंतिका को भूल नहीं पाया हूँ और ना ही उसके धोखे को। मैंने अवंतिका से इतना प्यार किया था कि मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। यहाँ तक कि मैंने माँ से भी शादी की बात कर ली थी। हालांकि माँ मेरी शादी के लिए राजी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, और जब मैंने बहुत मुश्किल से माँ को मनाया उसी टाइम पर वो मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि माँ मुझसे यही बोल रही थी कि वो मेरे लिए सही नहीं है, और आखिरकार वो सही साबित हुई और अवंतिका की वजह से मैं गलत। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभिमन्यु को दिलासा दे या फिर उसकी बात का कोई जवाब दे, इसीलिए इप्सिता ने चुप रहना ही सही समझा। अभिमन्यु जैसे ही अपनी बात बोलकर चुप हुआ, इप्सिता ने अभिमन्यु को सहानुभूति देते हुए कहा, थैंक यू, आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर की। इतना बोलकर इप्सिता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसने बेड पर बैठकर अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, अभिमन्यु अभी भी अपनी एक्स को नहीं भुला पाया है तो फिर उसने मुझे किस क्यों किया? और अगर उसे आज भी अवंतिका से उतना ही प्यार है तो क्या वो शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे भी पाएगा या नहीं? इप्सिता को अभिमन्यु की बातें सुनकर काफी बुरा लगा था। इप्सिता फिलहाल ये बात समझ नहीं पा रही थी।
उसने खुद को समझाते हुए कहा, मुझे अभिमन्यु की ये बातें सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मैं कौन सा अभिमन्यु से प्यार करती हूँ? मैंने भी तो उसे जो किस किया वो अवंतिका को दिखाने के लिए ही किया था, तो फिर अब मैं ये सारी बातें सोचकर इतना बुरा क्यों फील कर रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है मैं अभिमन्यु की बातों से हर्ट हुई हूँ? और वैसे भी हम दोनों तो शादी भी सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे इस तरह से उनकी बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं इस तरह अभिमन्यु की बातों से प्रभावित नहीं हो सकती। इप्सिता खुद को ये सारी बातें समझा रही थी। तभी उसने कहा, हमारी और अभिमन्यु की शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। मुझे शायद अभिमन्यु से ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और ना ही इस शादी से। इप्सिता ने इतना बोलकर एक गहरी सांस ली और उसने धीमी आवाज़ में कहा, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करना चाहिए और इस एग्ज़ाम के बाद मैं वापस घर जाऊँगी। तो फिर शादी अभिमन्यु से होनी ही है और फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभानी है, तो बेहतर होगा कि मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में ना सोचूं। इप्सिता इतना बोलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस करने लगी। फिर भी बार बार इप्सिता के दिमाग में किसकी ही बात आ रही थी। इप्सिता ने खुद को डांटते हुए कहा, क्यों मैं बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ? जब अभिमन्यु के दिल में मैं नहीं बल्कि वो अवंतिका ही है तो फिर उस किस का भी कोई मतलब नहीं है। मुझे वो सब भूल जाना चाहिए। शायद वो किस अभिमन्यु ने हर्ट ऑफ द मोमेंट में कर दी होगी। अब मैं उस किस के बारे में नहीं सोचूंगी। इप्सिता इतना बोलकर बिल्कुल शांत होकर बैठ गई, लेकिन चाहे वो खुद को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, उसके मन में कहीं ना कहीं अवंतिका को लेकर थोड़ा गुस्सा तो था ही, और वो अभिमन्यु से बात करने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अभिमन्यु की बातें प्रभावित कर रही थी। इप्सिता इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन सुबह इप्सिता एग्ज़ाम के लिए निकल रही थी, तभी अभिमन्यु इप्सिता के साथ उसे कॉलेज तक छोड़ने गया। इप्सिता ने पूरे रास्ते अभिमन्यु से कुछ भी नहीं कहा। अभिमन्यु भी इप्सिता से ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोलना चाहता था। इप्सिता जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने के लिए कार से बाहर उतरी, तभी अभिमन्यु भी दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए बोला, इप्सिता बेस्ट ऑफ लक। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू। इतना बोलकर इप्सिता चुपचाप कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु इप्सिता के व्यवहार को देखकर ही समझ गया था कि वो शायद कल रात की बात से परेशान हो गई है। अभिमन्यु ने सोचा, शायद मुझे इप्सिता से ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं अभी भी अवंतिका को पूरी तरह भूल नहीं पाया हूँ। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब शादी तो मुझे इप्सिता से ही करनी है। मैं माँ को दिए हुए वचन को तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन हाँ, इप्सिता को मैं समझा जरूर सकता हूँ। वैसे भी अब जब वो मेरी पत्नी बनने वाली है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें अनवांटेड फील ना होने दूँ और उन्हें सिक्योर फील कराऊं। इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा।